मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज 5 सितंबर 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन 11 नौजवान साथियों का, विशेष रूप से जिन्होंने एकेडमी के अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं अमर चंद गोरखनाथ हरियाणा से, मोहम्मद जुबेर खान जयपुर राजस्थान से, काजोल जायसवाल भोपाल मध्य प्रदेश से, समीक्षा गोस्वामी जबलपुर मध्य प्रदेश, साकेत शुक्ला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, अंसर खान अशोकनगर मध्य प्रदेश, हेमंत नागर शिपुरा कोटा राजस्थान, विपिन कुमार न्यू दिल्ली, ओमराज पांडे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, अक्षय तिवारी यवतमाल महाराष्ट्र और आशीष सेठ लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश। तो अमरचंद, मोहम्मद जुबेर, काजोल, समीक्षा, साकेत, अंसार, हेमंत, विपिन, ओमराज, अक्षय और आशीष, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, अब जबकि धीरे धीरे हमारी 15 दिन की क्लासेस शुरू होने के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, डेफिनेटली मैं समझ सकता हूं कि जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उनमें एक अलग तरह की उत्सुकता होगी, कुछ लोगों में थोड़ी सी बेचैनी भी होगी और कुछ लोगों में यह भी जानने की उत्सुकता है कि वे यदि क्लास में आएंगे तो उन्हें क्या फायदा मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा। इससे पहले भी मेरे पास इस बारे में मेल आते रहे हैं और अभी भी मेल आ रहे हैं और मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि 3-4 दिन पहले मैंने इसका थोड़ा सा जवाब देने की कोशिश भी की थी। मित्रों, वह जवाब मेरी तरफ से था, राइट, चूंकि मैं तो एकेडमी से जुड़ा हुआ हूं तो हो सकता है कि वह जवाब आपको सही न लगा हो, बहुत विश्वसनीय नहीं लगा हो, या यूं भी हो सकता है कि जो आप चाहते थे उस बात का आपको उस बात की जानकारी नहीं मिल पाई हो कि यह फायदा होगा या नहीं। यह इत्तफाक है फ्रेंड्स कि अभी मेरे सामने जो मेल हैं उसमें से मैंने 2 मेल चुने हैं जिन्होंने क्लास के बारे में अपनी राय दी है और ये वे स्टूडेंट हैं जो इससे पहले क्लास में आ चुके हैं, राइट, ये उनके अपने अनुभव पर आधारित मेल हैं। मैंने 2 मेल चुने हैं और भी मेल हैं और प्रतिदिन इस तरह के मेल आते हैं। मित्रों, मैं जानबूझकर उन्हें न तो पढ़ता हूं न बताता हूं, हां उनके नाम जरूर जो अंत में मैं लेता हूं उनमें शामिल होते हैं, राइट। तो मैं थोड़ी सी बातें उनके मेल की आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, हो सकता है कि शायद आप लोगों को ये पता लग सके कि यहां आने से आपको क्या लाभ होगा, थोड़ा सा आप विश्वास कर सके। और मित्रों, विश्वास होना तो देखिए जरूरी है, इसमें कहीं भी आपका किसी तरह का कोई दोष नहीं है कि आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, इसे आप बिल्कुल अन्यथा मत मानिएगा। मित्रों, एक जो मेरे पास मेल है ये योगेंद्र प्रताप का है जो 6th बैच के हैं और मैनपुरी से हैं। उन्होंने लिखा है कि सर प्लीज टेल माई मैसेज एंड एक्सपीरियंस टू ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फॉर 7th बैच। My whole life changed after class. I got a new vision for life and after returning home when I opened my notebook, I got a different and better mindset. Those 15 days were best days of my life. I cannot describe in words what I achieved in Bhopal during your class. I got many good persons there and a best friend too. And thanks a lot, sir, for giving me unforgettable memories for Lake City Bhopal. I really miss those days till now and I will miss those days forever. मित्रों, मैं इसे हिंदी में भी आपको सुना देता हूं, तर्जुमा करने की कोशिश कर रहा हूं। सर, कृपया जो 7th बैच के लिए स्टूडेंट आ रहे हैं उन्हें आप मेरा यह संदेश और अनुभव सुना दें। क्लास से लौटने के बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। जब मैंने अपना नोटबुक खोला तो मैंने ये देखा कि पूरी तरह से मेरी जो दृष्टि थी वह दृष्टि बदल चुकी है, बिल्कुल ही एक मुझे डिफरेंट किस्म का एक नया माइंडसेट महसूस हुआ। वे 15 दिन मेरी जिंदगी के बेस्ट दिन थे, सर्वोत्तम दिन थे। मैं उन्हें शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैंने भोपाल में इन 15 दिनों में क्या अचीव किया है मैं बता नहीं सकता। उस दौरान मुझे बहुत से नए दोस्त मिले, बहुत से अच्छे लोग भी मिले, और इसके लिए सर मैंने जो मेरी अविस्मरणीय जो यादें हैं खासकर भोपाल शहर को लेकर के और क्लासेस को लेकर के, मैं आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सचमुच मैं उन दिनों को बहुत याद करता हूं, बहुत मिस करता हूं, और मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक उन दिनों को याद करता रहूंगा, उन क्षणों को मिस करता रहूंगा। मित्रों, अब आप इसे समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखे हैं। दोनों चीजें उन्होंने लिखी हैं, खासकर जो उनके पढ़ने में तब्दीलियां आई होगी, जो उन्होंने नोटबुक शब्द इस्तेमाल करने के लिए कहा, और फिर वो माइंडसेट बदल गया और जिंदगी बदल गई, वो उनके एक लाइफ से रिलेटेड है। तो आपको यहां लाइफ मैनेजमेंट भी दिखाई देगा और डेली ऑडियो लेक्चर भी दिखाई देगा। इसके बाद मित्रों, बहुत ही एक छोटी सी लाइनें हैं, मैं आपको अर्जुन सूर्यवंशम का पढ़कर सुना देता हूं, जो हमारे थर्ड बैच के स्टूडेंट रहे और ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं। उन्होंने लिखा है, पहले उन्होंने दिल्ली के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में लिखा है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात कही है वो दो लाइन में है, देखिए। आई फाइंड माई सेल्फ इन मोर कमांडिंग पोजिशन एंड वेरी कॉन्फिडेंट। जब मैं लौटा अपने घर आया और फिर जब मैंने पढ़ना शुरू किया और जब मैं दूसरों से अपने आप को कंपेयर करता हूं, तो मैं अपने आप को ज्यादा कमांडिंग पोजिशन में पाता हूं और ज्यादा आत्मविश्वास मेरे में भरा हुआ है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं। आई एम वेरी लकी बिकॉज आई एम फॉलोइंग यू एंड हैव कम टू FEIAS इन माय फर्स्ट ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं आपको फॉलो कर रहा हूं, और जब मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में था तभी मैं आपकी क्लासेस में आया। और सर, आई एम थैंकिंग यू फॉर गाइडिंग एंड टीचिंग अस। मैं आपको इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमें गाइड कर रहे हैं और आप हमें पढ़ा रहे हैं। मित्रों, ये अर्जुन सूर्यवंशम का मेल है। संक्षिप्त में मैंने आपको दोनों मेल पढ़ करके सुनाए हैं मित्रों, और मैं समझता हूं कि इससे आपको थोड़ा सा अनुमान हो गया होगा। आइए अब मुख्य विषय के तहत मैं आज बात करने जा रहा हूं फ्रेंड्स, ब्रिक्स के ऊपर, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। पहले हम दूसरी खबरें देख लें फ्रेंड्स। ब्रिक्स की खबर तो न्यूज में थी ही, दूरदर्शन न्यूज पर भी और आकाशवाणी समाचार में भी होनी ही थी, और दूरदर्शन पर तो फिर इस पर काफी अच्छा डिस्कशन भी आया, जिसमें हमारे एक फॉर्मर सेक्रेटरी थे एक्सटर्नल अफेयर्स के, मतलब विदेश मंत्रालय के, और दूसरे एक एक्सपर्ट थे। अगर आप लोगों ने सुना हो तो मैं समझता हूं कि ब्रिक्स के बारे में काफी अच्छी जानकारियां मिल गई होंगी। इस पर हम लोग मुख्य विषय के तहत चर्चा करेंगे। एक शब्द आपने न्यूज में सुना होगा, न्यूज में मैं दो बातों की ओर आपका ध्यान यहां दिलाऊंगा, ब्रिक्स पर तो हम लोग बाद में बात करेंगे। एक शब्द प्रयोग में लाया गया था, संरक्षणवाद। संरक्षणवाद के प्रति चिंता व्यक्त की गई। मित्रों, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि यह संरक्षणवाद क्या है। दूसरा, उसमें प्रधानमंत्री जी का हमारा एक बयान है, स्टेटमेंट है, वहीं फोरम में उन्होंने एक बात कही है कि जो भारत में GST लागू किया गया है, यह हमारे देश का अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है। अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार की प्रक्रिया आपको मालूम है फ्रेंड्स, 1990 से शुरू हो गई है। 1990 से हम लगातार आर्थिक सुधार की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। फर्क यह है कि बहुत से देशों ने अचानक एक साथ ढेर सारे सुधार शुरू कर दिए, भारत ने ऐसा नहीं किया। धीरे धीरे हम ओपन अप हो रहे हैं, क्रमशः धीरे धीरे हम अपनी बाजार को या अपनी आर्थिक व्यवस्था को खोलते जा रहे हैं। संरक्षणवाद के विरोध में ये आर्थिक सुधार शब्द है। मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे रहा हूं। अब आपको प्रूफ करना है कि ये अब तक का, मतलब 27 साल 1990 से हमने शुरुआत की है मोटे तौर पर, और अब 26-27 साल हो गए हैं, उस दौरान जितने भी आर्थिक सुधार हुए हैं उनमें से सबसे बड़ा जो आर्थिक सुधार है, या कह लीजिए क्रांतिकारी आर्थिक सुधार है, वह GST है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये मेंस का एक बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। मुझे लगता है इस पर आप सबको विचार करना चाहिए। दोस्तों, मेरे पास अब इतना वक्त इसमें नहीं है कि मैं इसके बारे में आपको कुछ बता सकूं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, और प्लीज इस पर आप सोचिए ना, कुछ लिखने की कोशिश कीजिए, कुछ पॉइंट्स तैयार कीजिए, आपको मजा आएगा, और इस तरह की प्रैक्टिस आपको करना भी चाहिए। मित्रों, अगली खबर है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, आपको मालूम है, म्यांमार वहां से जाएंगे, और म्यांमार हमारे पड़ोस में ही है, हमारा पड़ोसी राष्ट्र एक तरीके से। और आप ये भी जानते हैं कि भारत अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम कर रहा है, लुक ईस्ट में नहीं रह गया है कि पूर्व की ओर देखो, अब तो पूर्व के लिए काम करो, पूर्व के साथ काम करो, एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर हम आ गए हैं। और पड़ोसी देशों के साथ जो हमारे संबंध है, ये आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड भी है और अनसॉल्व्ड पेपर भी यही बात चीख चीख कर कह रहे हैं कि पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित्रों, इस हिसाब से म्यांमार में प्रधानमंत्री की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे जब यात्रा पूरी हो जाएगी। दोस्तों, आखिरी खबर सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग को लेकर के है, जिसकी चर्चा मैंने कल की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसकी बैठक हो रही, खासकर उत्तरी कोरिया ने जो हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है उसको लेकर के, क्योंकि पूरी दुनिया इससे हिल गई है और लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि जो उत्तरी कोरिया है पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दे, राइट। तो इसको थोड़ा सा वाच कीजिए, देखिए कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या डिसीजन लिए जाते हैं और फिर उनके क्या नतीजे सामने आते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं ब्रिक्स पर और जितना समय है देखिए मैं उसको उपयोग में लाने की कोशिश करता हूं। अपने न्यूज में भी सुन लिया है, आज के अखबारों में भी पढ़ा है कि भारत को इस फोरम पर एक बड़ी सफलता मिली है। बड़ी सफलता इस मायने में मिली है कि भारत पहली बार जो घोषणा पत्र आखिरी में जो डिक्लेरेशन जारी होता है, सियामेन शब्द स्थान है जहां ये सम्मेलन हुआ है, नौवां सम्मेलन था, आठवां सम्मेलन इससे पहले पिछले साल गोवा में हुआ था, अगर आपको ध्यान होगा ये नौवां सम्मेलन है और ये शिखर सम्मेलन है। शिखर सम्मेलन मतलब उसमें राष्ट्र प्रमुख भाग लेते हैं, है ना, जो सरकार के प्रमुख होते हैं वो भाग लेते हैं, मतलब शिखर तो इससे ऊंचे स्तर का कोई सम्मेलन नहीं हो सकता, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भी माना जाता है जो शिखर सम्मेलन होते हैं। स्थान का नाम आपको याद होना चाहिए, प्री में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाने की थोड़ी सी संभावना बन जाती है। तो दोस्तों, इसमें भारत को जो सबसे बड़ी सफलता मिली है वो ये है कि देखिए, विश्व आतंकवाद से तो सब के सब त्रस्त हैं, हम ये भी जानते हैं कि भारत और चीन और पाकिस्तान इन दोनों में धीरे धीरे दोस्ती बड़ी गहरी होती जा रही है, उसके अपने रीजन है। गोवा में भी भारत ने कोशिश की थी कि जो विश्व आतंकवाद है उसके खिलाफ एक घोषणा पत्र जारी किया जाए, उसमें पाकिस्तान का नाम डाला जाए या पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है उनके नाम शामिल किए जाएं, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं होने दिया क्योंकि वो अपनी दोस्ती बनाए रखना चाहता था। भारत को अब जो शियामेन में जो सम्मेलन हुआ है इस बात की सफलता मिल गई, जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें बकायदे ऐसे आतंकवादी संगठनों का नाम मेंशन किया गया है जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, इसे बहुत बड़ी सफलता भारत की माना जा रहा है। दूसरी जो भारत की जो सफलता है मित्रों, उसमें भारत ने ये मतलब लोगों के दिमाग में, यानी कि जो पांच देश आए हैं इनको दिमाग में यह भरने की सफल कोशिश की है कि जो ब्रिक्स कंट्री हैं उनको अपना एक अलग से इंडेक्स जारी करना चाहिए। देखिए, इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, अभी आपने देखा ना कि इजी बिजनेस डूइंग इंडेक्स, आर्थिक स्तर के इंडेक्स, ये सब आते रहते हैं। तो ये इंडेक्स तैयार करने का जो काम है या कह लीजिए इस पर जो दबदबा है वो डेवलप्ड कंट्री का है, तो अपने मापदंडों के आधार पर वो इंडेक्स डेवलप करते हैं। इसीलिए जब जीवन स्तर पर इंडेक्स की जब बात आई तो भूटान ने कहा कि नहीं, यही सब केवल नहीं है कि उपभोग हम क्या क्या कर रहे हैं वही हमारे जीवन स्तर का निर्धारण नहीं करता, हम महसूस क्या करते हैं वो भी निर्धारण करता है। तो भूटान जैसे छोटे से देश ने हैप्पी इंडेक्स दे दिया, नेशनल हैप्पी इंडेक्स, जिसकी आज बहुत चर्चा हो रही है। तो ब्रिक्स मतलब भारत ने कहा कि ब्रिक्स देशों को भी अब एक ऐसा इंडेक्स जारी करना चाहिए, क्योंकि होता ही है कि जब वो इंडेक्स जारी होते हैं तो पूरी दुनिया उनके बारे में जानती है, तो फिर उससे आप उस देश के बारे में एक धारणा बना लेते हैं कि भाई अच्छा ये देश इस तरीके का है। तो ये मुझे लगता है कि दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे हैं। दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में आपको बहुत ही संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि देखिए, जो ब्रिक्स है बेसिकली एक बहुत बड़ी कंपनी है, गोल्डमैन सैक्स ग्रुप है, आप जानते होंगे, भारत में भी अब ये कंपनी काम करती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका वैल्यू करती है और बताती है कि कहां पैसा लगाना चाहिए, कौन सा देश या कौन सी कंपनी अभी ज्यादा ग्रोइंग है, इस तरह के काम वो करती है। तो उसी के एक इकोनॉमिस्ट थे, जी ओ नील उनका नाम था, जिम ओ नील इकोनॉमिस्ट थे, इस कंपनी में के इकोनॉमिस्ट थे। तो उन्होंने 2001 में स्टडी करने के बाद ये बात कही कि चार देश ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे, तो दुनिया के देशों को जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो धनी राष्ट्र हैं, यहां पैसा लगाना चाहिए। इसमें उन्होंने नाम लिया था ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये चार देश। ठीक, बाद में ये ब्रिक बने, बी आर आई सी, ब्रिक बन गया। उस समय एस नहीं था, इसको ध्यान रखिएगा कि एस नहीं था, एस बाद में जुड़ा, राइट। 2010 में जब चाइना में, चाइना को इसकी अध्यक्षता मिली, तो चाइना ने साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया, साउथ अफ्रीका को जब इनवाइट किया, तो उसके बाद साउथ अफ्रीका को भी इसका सदस्य बना लिया गया, तो एस जुड़ गया। तो ये जो ब्रिक्स के जो पांच अल्फाबेट हैं शुरू के, ये इन पांचों देशों की जो शुरुआत के अक्षर हैं उन पर आधारित है ब्रिक्स। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा दोस्तों, कि ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में जो पूरी की पूरी जो दुनिया है, सोचिए कि उसका 42% पॉपुलेशन रहती है, 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और जो जीडीपी है उसका ये 22% केवल कवर करती है। अब आप देखिए कि 42% आबादी है और वो दुनिया का जीडीपी का कितना योगदान दे रही है, मतलब उसके पास कितना धन है, मोटे तौर पर कहे केवल 22%, दुनिया का केवल 22% संपत्ति उसके पास है, जबकि पॉपुलेशन 42% है। तो सीधी सी बात है कि इसमें जो देश हैं वो विकासशील देश होंगे, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। इसी तरह से आपने G8 का नाम सुना होगा, है ना, G8 ग्रुप ऑफ 8 कंट्री, इसमें सभी के सभी विकसित देश हैं। इस विकसित देश का आंकड़ा ये है कि इन विकसित देशों में, मतलब 8 देश हैं, इसके पास पॉपुलेशन केवल दुनिया की 10% है, लेकिन ये जो जीडीपी है, ग्लोबल जीडीपी, उसका 46% कवर करते हैं। तो देखिए ये आंकड़ा ही अपने आप में बता देता है कि इस देश के लोगों का आर्थिक स्तर काफी अच्छा होगा। तो दोस्तों जीडीपी के बारे, सॉरी ब्रिक्स के बारे में ये मुझे कुछ आपको इम्पोर्टेंट बातें बतानी थी, और बाकी तो अखबारों में है, मैं आपको एडिटोरियल कमेंट और इसके इससे संबंधित जो लेख आएंगे वो प्रोवाइड कर रहा हूं, कराता भी रहूंगा, तो उनसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे और जान लेंगे। मित्रों जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं कुछ क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जो मुझे अखबारों के लिए, अखबारों से महत्वपूर्ण लगे हैं, उन्हें आप देख लेंगे। अब मैं आता हूं फ्रेंड्स ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, रवि कुमार, विवेक कुमार जायसवाल, ध्यानेश्वर मोरे जलगांव महाराष्ट्र से, विशाल जमशेदपुर से, ओम प्रकाश चौधरी बाड़मेर राजस्थान से, श्याम बाबू राय, अर्जुन सूर्यवंशम गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, शशिकला चौहान मुंबई महाराष्ट्र से, दीप शिखा चौहान, भगीरथ जलवानिया, अंकित कुमार सिंह, सुधीर बिहाड़े, आशीष कुमार पटेल रीवा मध्य प्रदेश से, और रूपेश शर्मा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।